पैराग्राफ चेंज। परंतु इस भक्ति आंदोलन के अपने अंतर्विरोध भी हैं, जिन पर दृष्टि डालना भी जरूरी है। समाज इतिहास के कुछ विद्वानों का मत है कि भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों तथा स्त्रियों की बराबर की भागीदारी वाली बात के पीछे वैष्णव भक्ति के ब्राह्मणवादी आचार्यों की उदार मानसिकता का योग उतना नहीं जितना इस बात का योग है कि भक्ति के आंदोलन के पीछे शूद्रों तथा नीची जातियों के लोगों की विराट शक्ति थी। उपासना तथा भक्ति के क्षेत्र में कुछ रियायतें देकर यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो संभव है कि न केवल भक्ति आंदोलन की बागडोर उन शक्तियों के हाथों में चली जाए, यह भी मुमकिन है कि चली आ रही वर्ण भेद मूलक स्त्री पुरुष में भेद करने वाली सामाजिक संरचना व्यवस्था का पूरा ठाट ही क्षतिग्रस्त हो जाए। इसी आशंका के चलते भक्ति के द्वार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खोल दिए गए। स्मरण रहे कि भक्ति और उपासना के क्षेत्र में ही मनुष्य मात्र की बराबरी को माना गया। समाज में जाति और वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार, आदमी और आदमी, स्त्री और पुरुष के बीच भेद बरकरार रखा गया। रामानुज की व्यवस्था थी कि भजन सारे भक्त एक साथ बैठकर करेंगे, भोजन अलग अलग पंक्तियों में, और रामानुज वर्ष में एक बार ही शूद्रों के साथ मंदिर में प्रवेश करते थे। पैराग्राफ चेंज। टिप्पणीकारों ने टिप्पणी की है कि इस प्रकार दलितों और स्त्रियों का उत्पीड़न समाज में बरकरार रहा, भेदभाव का शिकार वे होते रहें, अपमान का दंश वे सहते रहें, उन्हें इतनी सुविधा और रियायत जरूर दी गई कि अपमान से आहत, उत्पीड़न से विक्षुब्ध, भेदभाव के शिकार दलित और स्त्री ईश्वर के सामने गुहार लगा सके, अरदास कर सके। जरूरी था कि भक्ति आंदोलन के इस अंतर विरोध को सामने लाया जाता ताकि भक्ति आंदोलन को उसकी समग्रता और पूरे यथार्थ में जाना जा सके। इस पृष्ठभूमि में सगुण भक्तों की स्त्री विषयक दृष्टि और दृष्टिकोण सही परिप्रेक्ष्य में सामने आ सकेगा। सगुण भक्ति के तहत पहले सगुण कृष्ण भक्ति सामने आई। इसी पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत के 10म स्कंद को भी वरीयता दी, पृष्ठ संख्या 270, और उसमें भी ईश्वर या श्री कृष्ण के लोकरक्षक रूप के बजाय लोकरंजक रूप को प्रधानता दी। श्री कृष्ण की बाल तथा किशोर वय तक की लीलाओं की केंद्रीयता उनके संप्रदाय में रही, फलतः वात्सल्य और श्रृंगार को ही इस लीला में विशद किया गया। कालांतर में पुष्टि मार्ग में चार शिष्यों को आचार्य वल्लभ ने और चार को उनके पुत्र गोसाई विट्ठल दास ने दीक्षित किया, जो अष्टछाप के भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अष्टछाप में परिगणित श्री कृष्ण भक्तों में सर्वोपरि सूरदास रहे, जिन्हें विनय और प्रपत्ति की मनोभूमि से खींचकर वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के लीला गायन को अपने रूप में लगाया। सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तनिया के रूप में नियुक्त हुए और प्रातः से संध्या तक श्री कृष्ण के सोकर उठने से लेकर संध्या के उपरांत उनके पुनः सोने तक सूरदास ने जो कुछ गाया वही उनकी अमर कीर्ति बनकर सुर सागर में संग्रहित है। पैराग्राफ चेंज। स्मरण रहे कि वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के शिशु रूप को विशेष महत्व दिया और श्रीनाथ के मंदिर में उनके शिशु रूप को ही प्रतिष्ठित किया। सूरदास ने जो कुछ लीला गायन किया उसका सबसे बड़ा अंश श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। इसके अलावा सूर ने लीला गायन के अंतर्गत श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधों को भी गाया तथा श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के उपरांत उनके वियोग में दुखित राधा तथा गोपियों के विरह को भी मूर्त किया। संयोग की तुलना में सूर ने श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण गोपियों के विप्रलंब गीत अधिक गाए। सुरसागर एक प्रकार से विप्रलंब का काव्य ही है। कृष्ण एक बार गोकुल से मथुरा क्या गए, वे फिर गोकुल वापस नहीं लौटे। सुरसागर में श्री कृष्ण के वीरा में दुखित गोपियों के उद्गार ही सबसे अधिक मिलते हैं। प्रश्न है स्त्री विमर्श में सूरदास के रचे गाय के महत्व का क्या है। सूर के इस लीला गायन में जो उन्हें स्त्री विमर्श से जोड़ता है, जरूरी है कि इस बात पर हम गंभीरता से विचार करें। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः सगुण कृष्ण भक्ति के काव्य में ही हिंदी कविता में पहली बार स्त्री अपने वजूद के साथ कम से कम अपनी दो प्रधान भूमिकाओं में बहुत प्रकट होकर सामने आई है। एक अपने सबसे उदात्त जननी एवं माँ के रूप में और दूसरे प्रेमिका के रूप में, भले ही उसके प्रेम के आलंबन श्री कृष्ण हो। इसके पहले जायसी के पद्मावत को छोड़ दे तो हिंदी कविता में स्त्री के अपने वजूद, उसकी अस्मिता के दर्शन ही नहीं होते। आदि काव्य में वीर गाथाओं में वह सबसे सुंदरी मात्र है जिसे लेकर युद्ध होते हैं। लौकिक काव्यों में उसका प्रेमिका रूप है, परंतु बहुत उल्लेखनीय नहीं। सिद्धो नाथो तथा निर्गुण संतों की हम बात कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 271। सूर्य के काव्य में पहली बार नारी का माता रूप में भास्पर हुआ है, अपनी सारी गरिमा के साथ यशोदा में, देवकी में भी, परंतु यशोदा में अपने समूचे उत्कर्ष के साथ। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि ईश्वर की शिशु रूप में, वल्लभाचार्य की आराधना के रूप में भी, कहीं न कहीं यही तत्व है कि प्रभु जब शिशु रूप में उपास्य बनेंगे तो उनके साथ माता की संलग्नता जरूर होगी। वल्लभ की सोच में ऐसा भी न हो तो सूरदास ने जिस रूप में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को प्रस्तुत किया है, यशोदा उनमें बराबर की भागीदार है। मैया संबोधन के ढेरों पद है जिनमें श्री कृष्ण माँ को पुकारते हैं। कहा जा सकता है कि ईश्वर को शिशु रूप में प्रस्तुत कर वल्लभाचार्य ने प्रकारांतर से स्त्री के सबसे उदात्त रूप, उसके मातृत्व को सम्मानित किया है, और सूर्य ने अपने पदों में स्त्री के इस मातृत्व को उसकी समूची गरिमा के साथ मूर्त किया है। अब आइए स्त्री के दूसरे रूप पर, उसके प्रेमिका रूप पर, जिसका सुरसागर में भरपूर आख्यान है। गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम के संयोग और विप्रलम्ब के जो चित्र सूर्य ने उकेरे हैं, उनमें स्त्री के हृदय की उस प्रेम पिपासा को लक्ष्य किया जा सकता है। मध्यकालीन सामंती समाज की सारी घुटन के बीच जैसे सूर्य ने अभिव्यक्ति दी है, जन्म जन्म की यह प्यास है जो स्त्री हृदय में उमड़ती घुमड़ती रही है, और पुरुष वर्चस्व के समाज में उसके द्वारा थोपी गए नैतिकता के चलते जिसे स्त्री अभिव्यक्त करने में असमर्थ रही है, सूर्य ने उसे अभिव्यक्ति दी और वह कुंठाओं तथा वर्जनाओं से परे बड़े निष्कलुष निर्मल रूप में सामने आई है। संयोग और विप्रलम्ब दोनों में उसकी उत्कटता एक जैसी है। संयोग के समय रासलीला के प्रसंग में उसकी उदामता को देखें। श्री कृष्ण की बांसुरी के बजते ही घर द्वार लोकलाज के सारे बंधना को झटकते हुए गोपियां यमुना की ओर दौड़ पड़ती हैं और रात रात भर रास रचता है, मुक्त स्वच्छंद फिर भी निर्मल और पारदर्शी। आचार्य शुक्ल ने इस रास को जीवन महोत्सव कहा है, जिसमें गोप गोपियां पक्षियों की तरह स्वच्छंद हैं। उन्होंने लिखा है कि सूर द्वारा चित्रित यह वह स्वच्छंद समाज है जिसका स्वप्न अंग्रेज कवि शैली ने किया था। सूर की इस रास लीला को देखे और मध्यकालीन सामंती समाज के नारी पर थोपे गए विधि निषेधों पर ध्यान दे, स्पष्ट होगा कि अपनी सीमाओं में सूर किस तरह सामंती जकड़बंदी के खिलाफ प्रेम की इस महारास को संभव बनाते हैं। पृष्ठ संख्या 272। विप्रलम्ब के परिदृश्य में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति यह प्रेम प्रशांत रूप में सामने आता है, उद्वेलन है, परंतु प्रगाढ़ता के चिन्हाते वह अपनी सीमाओं में भी बांधा है। यह ललिकाई का प्रेम है जो समय के साथ गाढ़ा और प्रगाढ़ और प्रशांत हुआ है। श्री कृष्ण यद्यपि मथुरा में है जो गोकुल से बहुत दूर दूर नहीं है, परंतु कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास मथुरा नहीं जाती। स्त्री का यह वह स्वाभिमान है जिसे सूर ने परखा है। श्री कृष्ण ने शीघ्र लौटने का वादा किया था, नहीं लौटे, गोपियां संदेश भेजती हैं, परंतु अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए श्री कृष्ण के पास भागती नहीं। उद्धव गोपी प्रसंग में सूर ने नारी मन की भी न जाने कितनी परतों को खोला है। अज्ञ अपण गोपिकाओं को ऐसी जबान समझदारी और विदग्धता दी है कि वैज्ञानिक उद्धव के ज्ञान के दर्प को चूर चूर कर देती हैं। पूरा सुरसागर स्त्री विमर्श में सूर की भागीदारी का साक्ष्य है। अपने समय की सीमाओं में सूरदास यह कर सके नारी मन की तमाम गांठें खोलते हुए उसे पारदर्शी रूप में हमारे समक्ष न ला सके, स्त्री अस्मिता की पूरी गरिमा के साथ, यह बड़ी बात है।